भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है।
तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी।
हेलो सौरभ, कैसे हैं आप?
मैं बढ़िया हूँ प्रणय, तुम बताओ।
सौरभ, वैसे भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत डामाडोल चल रही है, पर एक तरफ ये भी खबर है कि इस साल भारत में 17 यूनिकॉर्न।
हाँ, 17 नए यूनिकॉर्न थे, ये पॉइंट की बात है। बिल्कुल। तो अच्छा। एक तो सेक्टर है, कुछ दिन पहले किसी और को बोल रहा था कि अर्थव्यवस्था इसलिए कुछ लोगों को लगता है बहुत अच्छी चल रही है, किसी को लगता है खराब, क्योंकि हर एक को एक अपनी विंडो दिखती है। तो जो काफी नए सेक्टर है, ई कॉमर्स हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, और जो नया डिजिटल सेक्टर है वो तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो काफी हमारे बड़े अलग दूसरे सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वहां पे हालत खराब है।
हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा और समझना चाहिए ना। और जैसे कि वो मार्क्स और एडम स्मिथ के टाइम से चला आ रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के साधन, जमीन, श्रम, पूंजी, तो ये तीसरा जो है पूंजी मतलब कैपिटल, इसके बारे में मुझे बहुत कम पता है, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, तो उसके बारे में कुछ जानना है मुझे।
बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर अभी हिंदुस्तान में ये वेंचर कैपिटल, वीसी इन्वेस्टमेंट एकदम हॉट चीज है, तो इसके बारे में आज की चर्चा की जाए।
ठीक है, तो कौन है हमें बताएगा इसके बारे में?
तो हमारे साथ है आज कुशल। कुशल एक वीसी फंड चलाते हैं, फर्स्ट चेक नाम से, से ही समझ में आ रहा होगा, ये पहला चेक देते हैं, ठीक है। तो पहले एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं। तो कुशल, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में।
गुड मॉर्निंग, थैंक यू।
तो कुशल, जैसा हम अक्सर करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताओ। तुम्हारा बैकग्राउंड वैसे वीसी जगत में कॉमन होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं, तुम एंटरप्रेन्योर से फिर वीसी बने हो, तो कुछ बताओ अपने बारे में।
जरूर। तो मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी बिट्स पिलानी से, बिट्स पिलानी गोवा कैंपस। 2012 में मैं वहां से ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होते ही मैं और मेरे एक हॉस्टल मेट ने हमने एक कंपनी चालू की थी जिसका नाम था नई दिशा स्टूडियोज। तो हम बच्चों के लिए एजुकेशनल गेम्स बनाते थे और ये हम स्कूल्स को भेजते थे।
अच्छा।
तो वो हमने कुछ हद तक स्केल किया, हमारे 100 स्कूल्स पेइंग कस्टमर्स थे, हमारा बाकी लोगों के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स हुए, बट फिर हमें थोड़ा समझ आया तीसरे साल तक कि ये बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा, स्केलेबल बिजनेस नहीं बनेगा। तो फिर हमने उसे उस पॉइंट पे मैं उस बिजनेस से निकला, मेरा पार्टनर चला रहा था उसके बाद भी, एंड उसके बाद मैं अपग्रेड में काम कर रहा था फॉर 2 इयर्स। अपग्रेड इज ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, एंड अपग्रेड के बाद फर्स्ट से पीसी चालू किया है मैंने।
तो थोड़े अपने दुख दर्दों से शुरू किया कि पहला चेक मिलने में कितनी दिक्कत होती है, ऐसा मुझे लग रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वीसी वर्ल्ड में जो टाइप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, स्पेशली टेक्नोलॉजी के बारे में, वो लार्जली एटलीस्ट 5 साल पहले तो नहीं थी, अब काफी कुछ बदल गया। तो वही एक सॉर्ट ऑफ मेरा भी एक आस्था था कि एक दिन इंडिया में भी इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स एक्चुअली समझ पाएंगे।
और ये थोड़ा अपवाद है ना, ऐसे जनरली होता नहीं है, अभी भी नहीं होता क्या?
अभी थोड़ा ज्यादा कॉमन है, बट फिर भी ज्यादातर वीसीज इंडिया में वो लोग हैं जो फाइनेंस में काम करके फिर वीसी बने हैं। मगर आप अगर यूएस में देखो तो ज्यादातर वीसी ऐसे होंगे जिन्होंने खुद की कंपनियां चलाई है या खुद इंजीनियर रहे हैं और खुद उन्होंने कुछ बनाया हो और फिर वो आप इन्वेस्टिंग कर।
अच्छा।
तो बट इंडिया में भी अभी काफी कंपनीज बनी है जो बड़ी होके फाउंडर्स ने बेची है और उन्होंने भी पैसा कमाया है, तो वो फाउंडर्स जब वीसी बन रहे हैं तो वो एक चेंज तो जरूर आया है।
अच्छा, तो पहले इसके बारे में और चर्चा करने से पहले मुझे थोड़े टर्मिनोलॉजी समझनी है। पहले तो मुझे ये बताइए वेंचर कैपिटल क्या है, मतलब ये भटकता हुआ कैपिटल ये क्या है एग्जैक्टली, क्या है ये और इसकी क्या जरूरत है अर्थव्यवस्था में?
Sure.
हमारे पास बैंक है, सरकारें हैं, स्टॉक मार्केट है, एंजल इन्वेस्टर है, ये क्या है फिर ये वेंचर कैपिटल?
तो वेंचर कैपिटल बेसिकली इस मनी और इस पैसा जो आपको मिलता है आपके बिजनेस चालू करने के लिए। तो ये बैंक और सरकार से बहुत अलग होता है। बैंक आपको पैसा देती है विद एक्सपेक्टेशन कि आप ये पैसा लौटाओगे, है ना। आप अगर बैंक से आप 1 करोड़ लेते हो तो वो लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो आपको उस 1 करोड़ पे सालाना 10-12-13-15% आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है और कुछ सालों बाद वो 1 करोड़ आपको वापस भी देना पड़ता है। और बैंक बस उन्हीं लोगों को लोन देती है जिनके पास यूजुअली कोई एसेट्स हो, मतलब आपके पास अगर घर है तो आप उसको गिरवी रख के लोन ले सकते हो, या आपका कोई बहुत कनेक्शन है बैंक में, या आपके कोई मतलब यू नो सोशल कोई स्टैंडिंग हो तो ही आपको लोन मिल सकता है, ऐसे लोगों को लोन आसानी से नहीं मिलता है। तो और बैंक जिस टाइप के कंपनीज को फंड करती है वो थोड़े स्टेबल कंपनी होते हैं, मतलब वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो दुनिया में पहले रह चुकी हैं। तो बैंक को वो भी बिजनेस समझ में आता है कि ठीक है ये ऐसी, जैसे सपोज मुझे कोई होटल खोलना है तो बैंक को पता होगा कि ठीक है होटल खोलने में इतना खर्चा होता है, इतने कस्टमर आएंगे तो ये इतना पैसा कमाएगा, तो उन्हें अंदाजा होता है कि कितना पैसा इसको दे सकते हैं हम। तो दैट इज व्हाट बैंक डज। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ये लोग ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका नॉर्मली कोई प्रायर कोई पहले ऐसी कोई कंपनी नहीं हुई होती, कुछ नया कोई कर रहा है, कुछ नया कर रहा है उसमें भी उसे काफी सालों तक उसे लॉसेस करने पड़ेंगे या काफी सालों तक उसको टाइम लगेगा वो बनाने में। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दो तीन चार पांच साल तक भी हो सकता है कि यू नो आप कुछ उसमें प्रॉफिट ना कमा पाओ, या उससे भी ज्यादा साल हो सकते हैं आप प्रॉफिट ना कमा पाओ, उसमें काफी टाइम और मनी लगेगा टू कुछ वैल्यूएबल बनाने के लिए, स्पेशली सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो वेंचर कैपिटलिस्ट इन टाइप के बिजनेसेस को फंड करते हैं और उनके टर्म्स भी अलग होते हैं, वो पैसा वापस नहीं मांगते हैं, वो आपके बिजनेस में एक स्टेक लेते हैं। सपोज आपके बिजनेस में आपने अगर कोई कंपनी चालू की और आपने कोई वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लिए, वो आपको 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ जितना भी देंगे उसके बदले में आप उन्हें अपने बिजनेस में हिस्सा देते हैं, तो आपकी कंपनी का 20% वो ओनर बन जाते हैं, आपकी कंपनी का 30% या 40% या 10% जो भी टर्म्स आपको मिले आप वो आपके कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। और जब आप कंपनी बड़ी बन जाती है कुछ सालों बाद, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, तो 5 या 10 साल बाद जब कंपनी बड़ी हो जाती है तब वो अपना स्टेक कंपनी में बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो वेंचर कैपिटल इज बेसिकली आपको पैसा मिलता है विदाउट गिविंग एनी कोलैटरल, आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है और आप कोई भी हो सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके फादर कोई बड़े आदमी हो या आपको कोई बैकग्राउंड हो, एज लॉन्ग एज आपको कुछ बनाना आता है और आप ये प्रूफ कर पाओ तो आपको आपको पैसे मिल सकते हैं।
तो और दूसरी जो इसमें टर्म्स थे स्टॉक मार्केट और एंजल इन्वेस्टिंग, इनमें क्या फर्क हुआ वेंचर कैपिटल के?
श्योर। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ये दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सपोज जैसे मेरा फंड है फर्स्ट चेक, तो फर्स्ट चेक में अराउंड 10 लोगों ने मुझे पैसा दिया है आगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट का मॉडल होता है। फिर वो खुद का पैसा, उसमें खुद का भी थोड़ा पैसा डालना होता है, बट लार्जली वो दूसरों का पैसा रेज करके एक फंड बनाते हैं और फंड से इन्वेस्ट करते हैं। और एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत ही डे वन पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जिस दिन मतलब बिल्कुल जब कुछ हो ही नहीं कंपनी में, बस चालू ही हो रहा हो, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, टिपिकली वो 10 लाख 5 लाख 20 लाख इस टाइप के अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली 2-3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
और एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा डाल रहे हैं।
बिल्कुल उन्हें एंजल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो उनका जो चांस है पैसा वापस कमाने का सबसे कम होता है, तो हेंस उसे एंजल बोलते हैं, बिकॉज वो आपको पैसे दे रहा है उस टाइम पर जब आपने बिल्कुल आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए और फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए आप उसे हम उसे एंजल इन्वेस्टर
बोलते हैं। फरिश्ते होते हैं वो, फरिश्ते।
हाँ बिल्कुल। तो ये एंजल इन्वेस्टिंग हुआ। तो नॉर्मली कंपनी के जर्नी में शुरू में एक एंजल पैसा डालता है डे वन पे, फिर जब कंपनी कुछ बना लेती है, कुछ प्रूफ करती है, कुछ थोड़ा बहुत दिखाती है कि हमने मतलब थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखाती है, उस टाइम पे वेंचर कैपिटलिस्ट डालते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ 2-3 करोड़ डालते हैं, कुछ $1-2 million डालते हैं, कुछ $5-10 million डालते हैं, कुछ $100 million डालते हैं। फिर कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो कंपनी को या तो कोई और कंपनी खरीद लेगी या तो फिर कंपनी का IPO होता है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनी अपने कंपनी या जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या जो कंपनी के फाउंडर है वो अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचते हैं और जनरल पब्लिक कंपनी में स्टॉक खरीद सकती है।
तो यहाँ पे प्रणय बस मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अभी जो खासकर एंजल इन्वेस्टिंग, मतलब हिंदुस्तान में मैं एक डाइकोटोमी टाइप की चीज जो आजकल देख भी रहा हूँ, अर्थव्यवस्था जैसी भी चल रही है लेकिन पिछले क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप अब पिछले कुछ 20 साल से इंडिया में ठीक ठाक है, तो काफी लोग अब पैसा बना रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, और यूजली जिन लोगों ने थोड़ा फर्स्ट जनरेशन या स्टार्टअप टाइप मोड में अच्छा पैसा कमाया है ना, वो लोग ज्यादा अच्छे एंजल इन्वेस्टर होते हैं क्योंकि वो समझ सकते हैं दूसरा आदमी क्या कर रहा है। तो ऐसे लोग पहले कम थे हिंदुस्तान में क्योंकि ये टोटल स्टार्टअप वार्टअप का थोड़ा जोश वोश हिंदुस्तान में कम होता था पहले, तो ये पिछले 20 साल से है ज्यादा। तो अब जो उन लोगों में से जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं वो जब एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो संख्या बढ़ती जा रही है और अब उनके चेक साइजेस भी बढ़ गए। अब ऐसा नहीं है कि एंजल इन्वेस्टर्स पहले 5-10 लाख लगाते थे, ज्यादातर अभी भी उतने ही लगाते हैं, पर अभी आपको मिल जाएंगे 50 लाख वाले, 1 करोड़ वाले,
बिल्कुल उससे ज्यादा में मिल जाएंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट के फाउंडर को देखो तो वो तो और भी काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर,
हाँ वो तो और भी बहुत लगा रहे, तो सुपर एंजल टाइप है।
अच्छा, तो मतलब मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ये सब जो कैपिटल के अलग अलग स्रोत हैं, ये आप रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं।
बिल्कुल,
तो एंजल इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा जोखिम भरा हो गया, तो ये कम मात्रा में मिलेंगे लोग और कम अमाउंट डालेंगे, पर ये सबसे पहले किसी कंपनी का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा।
नहीं नहीं, ये एक करेक्शन प्रणय, एंजल इन्वेस्टर संख्या में अभी वीसी फंड से बहुत ज्यादा है।
अच्छा, हाँ, क्योंकि वो छोटा छोटा सम दे रहे हैं इसलिए,
और इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑब्वियसली थोड़े कम होंगे ना, इंडिविजुअल्स तो बहुत सारे हैं।
ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वेंचर कैपिटल फर्म्स, जो कि थोड़ा थोड़ी ज्यादा मात्रा में अमाउंट देंगे, लेकिन उनका रिस्क प्रोफाइल एंजल इन्वेस्टिंग से थोड़ा बेहतर होगा।
बिल्कुल,
और अंत में फिर स्टॉक मार्केट, और सबसे अंत में बैंक। तो बैंक में जाना है, लोन मिलना है, उसका आप अगर बड़ी कंपनी नहीं होंगी तो आपको कोई चांस नहीं है।
हाँ, बैंक भी आजकल वैसे अगर कंपनी को किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंड किया हुआ है तो फिर बैंक कैश फ्लो लोन्स वगैरह देने को, वर्किंग कैपिटल लोन दे देती है, बट बैंक आपको कोई नई चीज बनाने के लिए लोन नहीं देती। बैंक कोई आपकी चीज अगर चल रही है, आपका आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वर्किंग कैपिटल लोन देते
हैं। हाँ, आप आइडिया पे लोन नहीं ले सकते, बैंक को आपको कैश फ्लो प्रोजेक्शन दिखाने पड़ेंगे। हाँ, कि देखिए मैं ऐसे पैसा कमा रहा हूँ और आपको ऐसे लौटाऊंगा। हाँ,
बिल्कुल,
आप इसे नहीं जा सकते कि देखो ये मैं, मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है और इस आइडिया की वजह से मैं बहुत पैसे कमाऊंगा तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे, ये चीज नहीं होती है। लेकिन ये इसमें एक और प्रणय, क्योंकि ये तुम्हारे सवाल से रिलेटेड ही सवाल है, मेरे कुशल थोड़ा सा अलग अलग जो वेंचर फंडिंग में अलग अलग टाइप के जो वेंचर फंड्स भी हैं, बिकॉज अर्ली स्टेज है, सीरीज ए है, बी है, सी है, इनका भी थोड़ा फर्क बताओ, वो भी फर्क सी है ना।
जरूर, तो जब कंपनी पहली बार चालू होती है तो फर्स्ट इन्वेस्टर उसमें नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर होते हैं, तो वो उस टाइम पे फाउंडर्स करीबन 50 लाख से 1-2 करोड़ तक जब भी पैसे रेस करते हैं मार्केट से, तो उसमें एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। उस टाइम पे कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो रफली होती है 5 करोड़ से 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, इस टाइप की वैल्यूएशन होती है। फिर कंपनी का एक सीड या सीरीज सीड राउंड टाइप होता है, जहाँ पे वो 3 करोड़ से लेके $1 मिलियन मतलब 7 करोड़ तक वो रेस करते हैं। उसमें सीड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, अर्ली स्टेज सीड फंड्स। तो इंडिया में सम सीड फंड्स हैं, जैसे इंडिया कुशन, ब्लूम वेंचर्स, के कैपिटल, तो ये टाइप के फंड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद का जो स्टेज आता है, जब फाउंडर रेस कर रहे हैं 1 मिलियन से 3 मिलियन या 4 मिलियन, वो एक सीरीज ए टाइप एक रेज हो गया। उसमें फिर काफी और फंड्स हैं, जैसे मैट्रिक्स पार्टनर्स, सिकोया कैपिटल, एक्सेल पार्टनर्स, बहुत सारे और फंड्स अभी इंडिया में चालू हो गए। देन इनमें भी कुछ फंड्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो कुछ फंड्स हैं जो 2 मिलियन का भी चेक लिखते हैं, बट इस मतलब 2, 5, 10 मिलियन के बाद उन्हें ग्रोथ कैपिटल बोलते हैं, वेयर टिपिकली कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिया होता है, मार्केट क्या है ये प्रूव कर लिया होता है, और अभी उन्हें पैसे चाहिए होते हैं कंपनी को स्केल अप करने के लिए। तो वो ग्रोथ कैपिटल स्टेज होता है, जहाँ पे 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन। यहाँ पे अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टेज में, आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर आउटसाइड इंडिया से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल है, टेंसेंट है, चाइना से कंपनीज आ रही है, ये सारे ग्रोथ कैपिटल इन्वेस्टर्स हो गए जो 20-30 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। और फिर इससे भी बड़े होते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड, जैसे सऊदी अरेबिया का फंड है, या यूएई का फंड है, या सिंगापुर का फंड है, ये लोग $100 मिलियन $200 मिलियन $500 मिलियन वो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सॉफ्ट बैंक भी इतने बड़े चेक साइज में दिखता है। तो दैट इज द रेंज इन वीसी।
करेक्ट, तो बेसिकली देखा जाए तो एकदम आपके पास आइडिया है और कुछ नहीं है, तो कोई आदमी आप पे भरोसा करके पैसे डाल रहा है, तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट का स्टेज हो गया।
बिल्कुल,
फिर आपने अपने आइडिया को थोड़ा एक प्रोटोटाइप, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप प्रूव कर लिया कि भैया ये आइडिया चलता है, मैंने कुछ क्या कहते हैं, या तो किसी कमर्शियल सेटिंग में ही चला करके दिखा दिया या एटलीस्ट अच्छी लैब सेटिंग में चला के दिखा दिया, तो एक सीड फंड बोलेगा हाँ ये मेरे लिए ठीक लग रहा है। और फिर वो थोड़ा सा उसमें हम ट्रैक्शन दिखा देंगे जिसको प्रोडक्ट मार्केट फिट टाइप बोलते हैं, उस टाइम पे सीरीज ए फंड आएगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा करना है, और उसके बाद में अब वो बड़े को और खूब बड़ा करना है, तो वो सीरीज बी टाइप के जो बड़ा फंड आएगा वो आएगा। तो ये एक जर्नी स्टार्टअप की रहती है। अच्छा,
पर ये बाउंड्रीज थोड़ी आर्बिट्ररी नहीं है, जैसे आपने बताया सीरीज ए और सीरीज बी, मतलब 1 मिलियन टू कुछ, ये कौन डिसाइड करता है? क्यों अगर मैं एक वीसी फर्म एक सीरीज ए से सीरीज बी फंडर क्यों नहीं बन सकता? बन सकता हूँ ना।
हाँ बिल्कुल, मतलब तो काफी बार ये एक दूसरे के एरिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ये कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है।
लेकिन प्रणय वो बाउंड्री जो है ये ऐसा नहीं है कि बन गई है, ये जो नंबर कुशल ने बोले ये मार्केट में है। हाँ, ये ऑर्गेनिकली डेवलप हुए
ये, हाँ ये मार्केट नंबर बिल्कुल। तो और इसमें उनके फंड का भी कोई मैच नहीं होता, जैसे आप अगर सपोज आप एक 100 मिलियन का फंड चला रहे हो, ठीक है, आपने 10 लोगों से 10-10 मिलियन लेके आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 100 मिलियन के फंड से आप एक ही स्टार्टअप में 50 मिलियन नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि वो अगर वो कंपनी डूब गई तो आपके ऑलमोस्ट आधा फंड आपका वैसे ही वाइप आउट हो जाएगा। तो आपका जितना बड़ा फंड है आप उस हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक है मेरे पास 100 मिलियन है तो मैं इसमें से मैं सपोज 60 या 70 मिलियन मैं इसे 20 कंपनी में डिवाइड करूंगा या 15 कंपनी में डिवाइड करूंगा, तो हर कंपनी में मैं 2 मिलियन 3 मिलियन 5 मिलियन इस टाइप के चेक्स लिखूंगा, फिर जो कंपनी अच्छा कर रही है उसमें बाद में और पैसे भी डालूंगा। वैसे उनके अपने फंड के कैलकुलेशन होते हैं, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि मैं कौन से स्टेज पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और जिन्होंने उसे पैसा दिया होता है जो 100 मिलियन का फंड चला रहा है उन्हें भी उन्हें लिमिटेड पार्टनर्स बोलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में उन्होंने अपने बिजनेस में या अपने लाइफ में पैसा बहुत कमाया है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो वो लोग अपना पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट को देते हैं आगे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन्हें भी वेंचर कैपिटलिस्ट ने कुछ प्रॉमिस किया होता है कि मैं ये पैसा 8 साल में या 10 साल में आपको वापस बताऊंगा और मैं इस पैसे को इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, तो वो फंड का एक थीसिस होता है, तो उस हिसाब से वो फिर डिसाइड करते हैं कि ठीक है अगर मैं 100 मिलियन का फंड बना रहा हूँ तो इसमें से मैं 60 या 70 मिलियन में सीरीज ए सीरीज बी स्टेज में 5 मिलियन 2 मिलियन टाइप के चेक्स लिखूंगा, और जो बाकी 30 मिलियन है जो कंपनीज सपोज मैंने 20 कंपनी में इन्वेस्ट किया उसमें से 5 अच्छी करने लगी तो उनके जो आगे फंडिंग राउंड होंगे उसमें मैं वापस इन्वेस्ट करूंगा।
अच्छा,
तो दैट इज तो फंडिंग ऐसे डिसाइड होते हैं कि आप कौन से स्टेज पे कर रहे हैं।
तो और प्रणय थोड़ा हर फंड जो है वो हर स्टेज की ना एक स्पेशलाइजेशन भी हो जाती है।
बिल्कुल,
तो जैसे कुछ लोग हैं वो बोले और हर किसी का अपना थीसिस भी है, जैसा कुशल ने बोला कोई बोल सकता है यार मैं एक 50 मिलियन का फंड शुरू कर रहा हूँ और मैं 500 कंपनी में पैसा डालूंगा। अब सोचो कोई 500 कंपनी में पैसा डाल रहा है तो वो कितना ड्यू डिलीजेंस कर सकता है एक कंपनी के ऊपर या उनपे कितना ध्यान दे सकता है? ज्यादा नहीं दे सकता। तो ये लेकिन उसका स्टाइल है फंड चलाने का, वो कहेगा मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत सारी जगह पर डालूंगा और उसका थीसिस ये है कि भाई मैं इतनी जगह पे डालूंगा तो कहीं पे तो अच्छा बन जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं मैं 10-12 कंपनी को अच्छे से ठोक बजा के चूज करूंगा, उनमें खूब सारा पैसा डालूंगा और उनके साथ काम करूंगा। ये नहीं है कि बस पैसा डाल के उनको मैं भूल गया और आई विल होप टू गेट लकी टाइप, पर मैं उनके साथ में उनकी हेल्प करूंगा, उनको और कॉन्टेक्ट दिलाऊंगा, उनको फर्दर फंडिंग राउंड्स दिलाऊंगा। तो बहुत तरीके के वीसीज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के वीसी फंड है और एक ही तरीके का उनका स्टाइल है इन्वेस्ट करने का।
हाँ, हमारे लिसनर शायद म्यूचुअल फंड की एनालॉजी से समझ पाएंगे, जैसे म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड टॉप 200 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ काफी अपना रिस्क प्रोफाइल अलग अलग स्प्रेड कर देंगे, तो शायद वैसे ही है।
हाँ, कुछ ऐसे भी, और कुछ जो खूब बड़े फंड होते हैं वो हर जगह करते हैं, जैसे अब इंडिया में फाइनली बहुत बड़े जैसे एक्सेल वगैरह के जो नए फंड हैं सैफ के, वो 350 मिलियन का एक फंड है। तो वो सब कुछ करते हैं ऊपर से नीचे तक।
बिल्कुल,
कोई और ये रिस्क प्रोफाइल आप इसलिए भी शायद मेंटेन करते होंगे जिससे कि जो दूसरे निवेशक है वो देखकर वो भी अपना कंफर्ट लेवल देखते होंगे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो इसीलिए अलग अलग ये प्रोडक्ट और फंड शायद बन जाते हैं।
तो यहाँ पे ये अच्छा टाइम है पूछने का कुशल थोड़ा सा, ये तो हम आज यहाँ पर हैं, पर ये वीसी इंडस्ट्री आई कैसे है यहाँ तक, कैसे शुरू हुई है और जहाँ हम पहुंचे हैं यहाँ कैसे पहुंचे हैं, कुछ इस बारे में बताओ।
हाँ, तो वीसी इंडस्ट्री चालू हुई थी यूएस में, अमेरिका में अराउंड 1940s-50s में, जो पहली कंपनी बनी थी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, इंटेल, देन इंटेल से काफी सारी कंपनीज आगे निकली। तो बीसी इंडस्ट्री का जो ओरिजिन है वो क्वाइट क्लोजली कंप्यूटर रेवोल्यूशन के साथ हुआ है. मतलब दुनिया में पहली बार ऐसा कोई यूज केस निकला जहाँ पे यू नो शुरू में बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है मगर बाद में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलते हैं. तो ये टाइप के कंपनीज को फंड करने के लिए वीसी इंडस्ट्री बॉर्न हुई. नॉर्मल बिजनेस में ऐसा होता है कि यू नो जैसे आप अगर साइकिल बनाते हो या टेबल बनाते हो या कोई भी चीज बनाते हो तो आप हर चीज एवरी टाइम जब कुछ आप बनाते हो तो उसका आपके खर्चा होता है. सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता. सॉफ्टवेयर में आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया उसके बाद आप उसको हजारों बार बेच सकते हो, आपका कोई और खर्चा नहीं होता, खाली बनाने का खर्चा होता है. तो इस टाइप के बिजनेसेस को फंड करने के लिए वीसी इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ पैदा हुई. और क्योंकि इसमें शुरू में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है मगर एक बार प्रोडक्ट बन गया और हिट हो गया तो उसके बाद आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो.
अच्छा, तो इसीलिए इसे कैपिटल बोलते हैं क्या? जैसे मतलब ये तो समानता दूसरी और चीजों के साथ भी होती है ना, जैसे आपको कोई कोयले की खान बनानी है या फिर आपको ऑयल निकालना है सब, तो पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा पर उसके बाद शायद कम हो जाएगा.
ये सही है बट कोयले की खान बनाना लोगों ने पहले बनाया हुआ है तो उसमें रिस्क थोड़ा कम है. बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे कोयला है, मैं इसको खोदूंगा या माइन बनेगी इसमें से इतना कोयला निकलेगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करके एक प्लान बना सकते हो. सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो बहुत बार लोग पहले वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको एक प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि इसका क्या होगा, ये अगर बन गया और अगर ये चल भी गया तो इस कंपनी की कंपनी कितनी बड़ी बनेगी. तो ये चीजें शुरू में प्रिडिक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है. जैसे आप अगर आपको मैंने फेसबुक दिखाया होता 10-15 साल पहले कि एक वेबसाइट है जहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स एक दूसरे के फोटोज लाइक करते हैं और अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं तो आपको लगा होता है कि ठीक है तो मतलब इसका क्या ही होगा ना. ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि ठीक है मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट है क्या ही होगा इसका. बट आज फेसबुक इज अ 500-600 billion dollar कंपनी. तो दिस वीसी इज टिपिकली वेंचर कैपिटलिस्ट उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो, और रादर वेंचर कैपिटलिस्ट उन चीजों से अपना पैसा कमाते हैं जो पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते. तो इसीलिए ये इंडस्ट्री यूएस में चालू हुई लेट 90s से. जब इंटरनेट इंडिया में आया तभी से थोड़े थोड़े फंड चालू हुए थे. ICICI वेंचर्स आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द अर्ली फंड था. वेस्ट ब्रिज कैपिटल आया था विच इज लेटर ऑन बिकेम सिकोया कैपिटल. सेफ वॉज अनदर फंड दैट वॉज ऑपरेटिंग इन अर्ली 2000s. तो ये कंपनीज ने शुरू में जस्ट डायल, मेक माई ट्रिप, नौकरी.com इन टाइप के इंडियन कंपनीज को फंड किया था जो आज लिस्टेड है. जस्ट डायल इज लिस्टेड इन इंडिया एंड मेक माई ट्रिप इज लिस्टेड इन NYSE एंड नौकरी.com इज आल्सो लिस्टेड इन इंडिया. तो ये 3-4 हिट्स हुए थे इंडिया में जो जिन्होंने VCs को काफी पैसा कमा के वापस रिटर्न किया. तो उसके बाद और इंडस्ट्री बढ़ने लगी और लेट 2000 मतलब 2011-12 तक काफी और फंड्स एक्टिव हो गए थे जैसे एक्सेल पार्टनर्स, मैट्रिक्स पार्टनर्स. 2008-09 से ही चालू हो गए. अच्छा. जैसे आप अगर 2-3 कंपनियां और काफी बड़ी हुई थी जैसे कि Baazi.com जो अवनीश बाजार में चालू करके सेल किया था और उसमें से भी 2 VCs निकले थे. अवनीश ने मैट्रिक्स चालू किया एंड सुवीर ने नेक्सस पार्टनर्स ज्वाइन किया एज एन MD. तो ये सारे फंड्स भी थे. अभी तो वंस Flipkart, Ola, all these companies started becoming very big. तो अभी तो काफी सारे और नए funds भी खुल गए हैं.
अच्छा.
तो अभी तो इंडिया में 50 से ज्यादा funds easily होंगे.
तो ये सब VC market की शुरुआत भारत में मतलब IT boom के साथ हुई क्या? मतलब 2000 के अराउंड की 1992 के बाद जब आर्थिक सुधार हो गए उसके बाद काफी VC आ गए?
नहीं, आर्थिक सुधार के बाद. आर्थिक सुधार तो ऑफकोर्स नेसेसरी कंडीशन था फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट टू कम इन. बट IT सर्विसेज से इंडिया में एक टैलेंट का पूल बन गया. इंडिया में लाखों इंजीनियर, ट्रेन इंजीनियर्स आ गए जिन्हें कुछ बनाना आता था. IT सर्विसेज जो कंपनीज हैं जैसे इंफोसिस, विप्रो, HCL, ये लोग अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाते. ये लोग दूसरों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो दूसरे लोग इंटरनली यूज कर सकते हैं. जैसे इन्फोसिस का कोई क्लाइंट होगा जैसे बैंक ऑफ अमेरिका या मॉर्गन स्टैनली या गोल्डमैन सैक्स, तो उन लोगों के जो इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाती है और मैनेज करती है. इससे क्या हुआ, इंडिया में लाखों इंजीनियर्स ऐसे बन गए जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा और एट स्केल बनाना सीखा. तो वो एक पहला सॉर्ट ऑफ लेयर बन गया. उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा स्टेप आया इंटरनेट. एक बार इंटरनेट इंडिया में आ गया, लोगों के पास डेस्कटॉप आने लगे, लोगों के पास ऑफिस में इंटरनेट कंप्यूटर्स लगने लगे, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बनी जिससे संजीव बिकचना ने Naukri.com स्टार्ट किया, दीप कालरा ने मेक माई ट्रिप स्टार्ट किया. तो ये सारे कंपनीज का जो मेन क्राइटेरिया था वो इंटरनेट था, कि इंटरनेट इंडिया में आया, लोग यूज करने लगे, एक यूजर बेस बन गया, उसके बाद ये सारी कंपनीज चलने लगी। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन था।
तो प्रणय, एक ओवरऑल जो मैं कमेंट करूंगा कि ये इंटरनेट तो एकदम एक खास चीज है ही, क्योंकि एक इंटरनेट की एक बड़ी एक जो चीज है, जैसा कुशल ने भी बोला कि पहले इनफैक्ट जब यूएस में स्टार्ट हुआ वेंचर कैपिटल, वहां पे आपको काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता था बिना कुछ एग्जैक्ट बिजनेस दिखे हुए सामने। लेकिन इंटरनेट ने एक ये चीज पॉसिबल करी कि आजकल स्टार्टअप चलाने का जो सीड कैपिटल है वो बहुत कम हो गया। और ये हिंदुस्तान जैसी कंपनीज कंट्रीज जो है जहाँ पे पैसा ओवरऑल कम है, राइट, आई मीन आप जो भी जो पैसा लगाते हो वो आपकी टोटल अर्थव्यवस्था का ही कुछ परसेंटेज है ना। तो ये तो नहीं है कि आपकी वीसी इंडस्ट्री जो है वो, अगर आपकी इकोनॉमी $1 trillion की, आपकी वीसी इंडस्ट्री जो है वो 100 billion से ज्यादा शायद नहीं होगी। थोड़ा सा हिंदुस्तान में ग्लोबल कैपिटल भी आता है, एक वो चीज है, जब फास्ट ग्रोइंग है आप तो बहुत ग्लोबल कैपिटल आएगा। लेकिन उसके अलावा एक उसका एक रिलेशन है, क्योंकि आप ये देखो कि वीसी फंड में कौन पैसा लगाता है, वो पैसा भी तो आपकी अर्थव्यवस्था से ही आता है ना। तो पहले वीसी फंड्स में हिंदुस्तान के बाहर का ही पैसा था ज्यादातर। एक ये हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो पिछले 5-10 साल का एक बड़ा चेंज ये है कि अब हिंदुस्तान में काफी पैसा आ गया है जो वीसी फंड्स में जा रहा है, ये पहले नहीं होता। और ये आर्थिक सुधारों का ये देख सकते हो कि अभी आप देखोगे कि खूब फैमिली ऑफिसेज का एक एक्सप्लोजन हो गया इंडिया में। तो फैमिली ऑफिसेज बेसिकली एक प्रोफेशनल रन ऑफिसेज हैं जहाँ पे जो पहले फैमिली रन कंपनीज होती थी उनको, उनके अभी जो बेसिकली बच्चे वगैरह है वो हमेशा ये नहीं बोलते कि मुझे अपने पापा की कंपनी चलानी है, वो बोलते हैं ये मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दे दूंगा या बेच दूंगा और हम सिर्फ पैसा प्रोफेशनली मैनेज करेंगे।
अच्छा,
हम बिजनेस नहीं चलाएंगे, जरूरी है। और फिर ये जो पैसा प्रोफेशनली मैनेज होता है वो बहुत जगहों पे जाता है, कुछ बैंक्स में जाएगा, कुछ स्टॉक मार्केट में जाएगा, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वीसी इंडस्ट्री में भी जाएगा।
ओके,
तो क्योंकि आर्थिक सुधार हुए इसीलिए ओवरऑल जो ग्रोथ रेट इतना तेज हुआ उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में पैसा बनाया है। और वीसी इंडस्ट्री फाइनली उन सब लोगों का पैसे का कुछ अंश इस वीसी इंडस्ट्री में भी आता है। तो आर्थिक सुधार जैसा कुशल ने बोला वो एक नेसेसरी कंडीशन है, वो नहीं हो तो ये ना वो पैसा होगा और ना ही वो रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से पैसा लाना ले जाना भी 92 से पहले बहुत मुश्किल था। तो कौन पैसा लगाएगा इंडिया में अगर आप अपना पैसा बाहर वापस नहीं ले जा सकते आसानी से। तो वो सब चीजें आसान नहीं है।
हाँ, और बाहर का पैसा भारत में लगाने की भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है उसके पहले तो।
बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस चले गए।
और इस पे तभी बहुत ज्यादा हाई टैक्स भी था। अगर आप सपोज 100 रुपया लगाते हो और वो 1000 रुपया बन जाते हैं 5-10 साल बाद, तो आपने एक रिस्क लिया है, तो आपका जो 900 रुपया प्रॉफिट बना है वो उसके कारण बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करती थी पहले और इसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती थी। अब जाके थोड़ा टैक्स कम, अभी भी ज्यादा है बट फिर भी पहले से तो कम हुआ है। कैपिटल गेन्स जो टैक्स बोलते हैं ये भी एक काफी बड़ा क्राइटेरिया हो गया था जो
कुछ मैकेनिक्स बताओ कि ये LP क्या होता है, वेंचर पार्टनर क्या होता है, वीसी जो, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि जब खासकर स्टार्टअप वाले एंटरप्रेनर जाते हैं उनको लगता है ये जो आदमी है पहला, जो तुमने बोला उनका खुद का पैसा नहीं है, लेकिन उनके क्या इंसेंटिव है, वो क्यों पैसा लगा रहे हैं, वो क्या सोच रहा है आदमी जो पैसा लगा रहा है।
जरूर, तो जिन लोगों को हम वीसी बोलते हैं उनका वो लोग दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं। तो जिन लोगों का पैसा मैनेज करते हैं जो उनके फंड में निवेशक हैं उनका, उनको लिमिटेड पार्टनर्स बोलते हैं, बिकॉज वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो खाली पैसा देते हैं और फिर जो वीसी है वो बंदा उस पैसे को मैनेज करता है। तो टिपिकली
तो ये LPs किस टाइप के हैं ये बताओ ना।
तो LPs कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है जिसके पास पैसा है इन्वेस्ट करने को। इट कुड बी लार्ज, कोई बिलियनर है जिसने बहुत सारा पैसा कमाया है और उसे एक अपना छोटा सा, सपोज आपने लाइफ में अगर 1000 करोड़ कमाए हैं तो आप मे बी 100 करोड़ कोई हाई रिस्क वेंचर में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो वो 100 करोड़ आप अलग अलग वीसी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। या कोई बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पैसे हो सकते हैं। या कोई फैमिली ऑफिस होती है तो किसी का फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और पब्लिक हो गया तो देन उसमें से जो पैसा उनका बनता है वो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। कुछ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। US में स्पेशली बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जैसे येल है, स्टैनफर्ड है, हार्वर्ड है, इन सब के एक एंडाउमेंट फंड्स होते हैं। तो ये लोग पूरा का पूरा कॉलेज अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स पे चलाते हैं, तो ये लोग भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन फंड्स होते हैं कंट्रीज के, जैसे LIC है, LIC तो खैर आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट इंडिया में, बट कनाडा का पेंशन फंड है, बाहर के कंट्रीज के जो पेंशन फंड्स हैं वो भी काफी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा जो कैलपर्स है, कैलिफोर्निया का जो पेंशन फंड है, वो तो प्रणय ये मैं बोल रहा था राइट कि इकोनॉमी के साइज वगैरह से कितना फर्क पड़ता है, तो कैलिफोर्निया का जो पेंशन फंड है वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है। और आप देखोगे तो पेंशन का पैसा, ये मतलब एक आम आदमी की पेंशन का पैसा है, जिसको कहना चाहिए सबसे लो रिस्क, वो चाहेगा कि यार मेरे पैसे के साथ कोई रिस्क मत लो, मेरे को अपना बुढ़ापा निकालना है इस पैसे से।
हाँ
ठीक है
बिल्कुल। हाँ वैसे हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रांस में पेंशन का थोड़ा सिस्टम चेंज कर रहे थे, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ। और आप बोल रहे हैं कि पेंशन फंड अब लोगों के VC में डाल देंगे
फंड। वो डालते हैं
नहीं, वो डालते हैं। हाँ। तो वो इतने बड़े फंड है कि वो ही सबसे बड़े इन्वेस्टर है VC फंड में, क्योंकि वो शायद कुछ 500 बिलियन का फंड होगा। ठीक है, और वो बोलेगा कि ठीक है मैं 2% 98% में बाकी जगह डालूंगा, लेकिन 2% मैं जो हूँ वो हाई रिस्क में डालना चाहता हूँ, ताकि मेरा रिस्क प्रोफाइल बैलेंस हो जाए थोड़ा।
बिल्कुल।
अब वो 500 बिलियन का जो 2% है वो भी 10 बिलियन हो जाता है।
करेक्ट।
तो काफी बड़ा नंबर हो जाता है इस तरह से। पेंशन फंड्स जो पैसा डालते हैं वो काफी बड़ा सम है बाहर की कंट्रीज में, तो ये मेरे को हमेशा एक बड़े मजा आता है देख के कि ये सबसे जो कहना चाहिए लो रिस्क, एक आम वर्किंग आदमी का पैसा जो कभी किसी स्टार्टअप को छुएगा नहीं दूर से, लेकिन एग्रीगेट होके वो पैसा रिस्क वाले चीजों में चला जाता है। और ये एक इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में पेंशन फंड्स को अलाउड नहीं है VC फंड्स में पैसा डालने का। पर हम भी एक ऐसी शुरुआत कर सकते हैं कि भाई 2% अमेरिका में होता है, हम में भी 0.2% करेंगे, वो भी बहुत बड़ा सम हो जाएगा, क्योंकि पेंशन फंड्स LIC वगैरह का फंड्स बहुत बड़े हैं, उसका 0.2% भी काफी बड़ा होता है।
तो VC फंड में जो लोग फंड चलाते हैं उनको GPs बोलते हैं, जनरल पार्टनर्स।
अच्छा,
ये वो लोग हैं जो डे टू डे फंड्स ऑपरेशन डिसाइड, ये लोग डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब अपना स्टेक बेचना है, कंपनी के साथ काम करते हैं, उन्हें मेंटर करते हैं, तो ये डिसीजन मेकर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना। यूजुअली एक फंड में 4-5 पार्टनर होते हैं, इनको जनरल पार्टनर बोलते हैं, और फिर उनके अंडर कुछ और लोग काम करते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये पार्टनर को उनके डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करते हैं, ये लोग भी डील्स सोर्स करते हैं, ये लोग मार्केट में कंपनियां ढूंढते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और अपने जनरल पार्टनर को बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है, और फिर इंटरनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है कहाँ इन्वेस्ट करना है। हर फंड के थोड़ा अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ फंड्स में हर पार्टनर अपना डिसीजन अकेला ले सकता है, कुछ फंड्स में वोटिंग होती है, अगर 4 पार्टनर है तो ऑल 4 हैव टू अग्री, कुछ फंड्स में अगर 2 मान गए तो फिर वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो हर फंड में थोड़े अलग अलग रूल्स, इंटरनल उनके जो डायनामिक्स होते हैं कुछ अलग अलग होते हैं, बट फाइनली एक इन्वेस्टमेंट कमिटी बैठती है, जो 4 पार्टनर होते हैं वो साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि ठीक है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इस कंपनी का हमारा स्टेक हमें बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो ये VC फंड ऐसे चलते हैं टिपिकली वो। हाँ, तो GP कवर कर लिया मैंने, LP कवर कर लिया, तो मेन यही 2 रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं VC फंड के।
राइट, और इंसेंटिव स्ट्रक्चर पे कुछ बताओ ना कुशल, VC फंड के अंदर का इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है?
तो VCs का इंसेंटिव स्ट्रक्चर टिपिकली एक 220 फॉर्मूला के हिसाब से चलता है। इसका मतलब है कि सपोज आपका 100 करोड़ का फंड है, तो आपको उस फंड का 2% एवरी ईयर आपको मिलेगा एज फीस। तो मतलब आपको 2 करोड़ रुपया हर साल मिलेगा जो आपको उसमें अपना फंड चलाना है, मतलब आपकी सैलरी हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, आपको कोई इवेंट्स करने हैं तो उसमें आप चारों की सैलरीज, इवेंट्स, आपका स्टाफ, सब कुछ खर्चा आपको उसमें निकालना होता है। और 20 जो है, 220 का 20 होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, उसको कैरी बोलते हैं। तो अगर आपने सपोज 100 करोड़ का फंड रेस किया 2010 में, और 2020 तक आपने उसको अपने सपोज 10x कर लिया और आपने 1000 करोड़ बना लिए, तो आप पहले आपका 100 करोड़ आपके इन्वेस्टर्स को लौटाओगे, और फिर जो 900 करोड़ जो आपका प्रॉफिट है उस पर 20% जो जनरल पार्टनर है जो फंड मैनेज कर रहे थे वो उन्हें मिलता है, तो वो उन्हें जाता है एज ए इंसेंटिव। तो आउट ऑन दैट 900 करोड़, 180 करोड़ उन्हें और एक्स्ट्रा मिलेगा, जो उनका एक लॉन्ग टर्म इंसेंटिव होता है पैसों को मल्टीप्लाई करने का और अच्छे रिटर्न जनरेट करने का अपने इन्वेस्टर्स के लिए। So that is the incentive structure.
तो खैर मैं यहाँ ये बता दूं, कुशल ने इलस्ट्रेटिव बहुत ही रोजी नंबर्स बताए, मतलब पूरे पूरे फंड पे कोई 10x बनाए ऐसा फंड अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है।
हाँ।
शायद पता नहीं US में हुआ होगा। हाँ। तो पता नहीं
US और चाइना में हुआ है, इंडिया में अभी तक तो नहीं हुआ है। चाइना में तो 100x भी हुआ है एक फंड।
अरे सीरियसली पूरे फंड का?
पूरे फंड का।
वाओ 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 दैट इज अमेजिंग।
पर ये कैसे होता है सौरभ और कुशल, मुझे ये समझाइए आप कि कंपनी खुद ही पैसे नहीं बना रही रहती है जिनके जिनमें ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो इतना पैसा वो कैसे बना रहे, कहाँ से मैन्युफैक्चर?
अरे हिंदुस्तान में इतना अच्छा एग्जांपल है ना, अभी देखो फ्लिपकार्ट तो आज तक पैसे नहीं कमा रही है, लेकिन वॉलमार्ट ने 13 बिलियन में खरीद के सारे इंडिया के वीसी इकोसिस्टम की चांदी कर दी है।
तो क्या इंसेंटिव्स है उनको ड्राइव कर रहे हैं, मुझे थोड़ा फंडामेंटली समझना है क्यों वॉलमार्ट इन्वेस्ट करेगा उसमें।
तो ये थोड़ी गलत फहमी होती है कि ये कंपनीज पैसे नहीं बनाती है, वो पैसे प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बनाना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बना नहीं सकते। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज, जैसे आप अगर फेसबुक को देख लो या गूगल को देख लो, तो इनके बारे में भी लोग यही कहते थे कि क्या फायदा है, ये कंपनी तो प्रॉफिट नहीं बनाती है, ये कंपनी तो खाली लॉस ही लॉस करते जाती है। मगर जब वो प्रॉफिट बनाने लगी तो उन्होंने वो लोग अभी आई थिंक क्वार्टर में 5 बिलियन प्रॉफिट बनाते हैं, मतलब साल का 20-30 बिलियन प्रॉफिट वो बना रहे हैं फेसबुक में।
अच्छा, और फेसबुक ऑलमोस्ट एड्स वगैरह उस तरीके से।
हाँ, तो ये जो कंपनीज होती है इनका प्रॉफिट एक लेवल के बाद आता है, मतलब उन्हें एक साइज की कंपनी बनानी पड़ती है, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाती है और फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो जो वीसीज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस होप में कर रहे हैं कि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा और मुझे 5-6-10 साल भी रुकना पड़े, मगर जब ये चल जाएगा तो तब मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ये ऑर्डिनरी लोगों को समझ में जाता है कि क्या फायदा हुआ, ये कंपनी पैसा नहीं बनाती है तो फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने क्यों खरीदा 16 बिलियन में। अभी फ्लिपकार्ट की जो सेल्स है वो बाकी सारे रिटेलर से मिला के ज्यादा है, मतलब आप शॉपर स्टॉप, लाइफ स्टाइल, बिग बाजार, आप सारे रिटेलर्स को पकड़ो एड कर लो, उससे आई थिंक दुगना है फ्लिपकार्ट की सेल्स। तो प्रॉफिट बनाना मतलब वो इतना मुश्किल काम नहीं है, बट अभी उन्होंने ये कैलकुलेशन किया होगा कि अभी मार्केट और डीप है और ज्यादा लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं, अभी भी इंडिया में आई थिंक कुछ खाली 50-60 मिलियन लोग, 70 मिलियन लोग ऑनलाइन खरीदते हैं और इंडिया में है तो 1 बिलियन लोग, राइट? तो फ्लिपकार्ट और इन्वेस्ट कर रहा है और वेयर हाउसेस बना रहा है और एड्स कर रहा है और लोगों को ऑनलाइन ला रहा है और लोगों को प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो जब वो बनाना चाहेंगे प्रॉफिट तो बना लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है।
तो ये प्रणय मेरे ख्याल से इंटरनेट कंपनीज में ये जो ट्रेंड है ये पेपाल ने शुरू किया था सबसे पहले।
Yes.
कि पेपाल पहली ऐसी कंपनी थी जिसने जो ऐसा बोलती थी कि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता पर कुछ ऐसा कि $2 खर्च करके $1 बनाती थी।
अच्छा, okay.
जो आजकल आप देखेंगे अखबारों में ऐसा आता रहता है ना कि ये जितनी भी बड़ी स्टार्टअप्स इंडिया में ये क्या कहते हैं इन्होंने इतने हजार करोड़ खर्च किए और सिर्फ इतने करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। तो ये पेपाल ने पहली बार ये एक तरीके की प्लेबुक बनाई कि भाई बड़ा होना अपने आप में वैल्यूएबल है।
देखो जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं जैसे पेपाल और फेसबुक जिनमें एक नेटवर्क इफेक्ट्स नाम की चीज होती है, तो ये बिजनेसेस है ये वैल्यूएबल तब बनते हैं जब इनके पास बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं। जैसे अगर आप फेसबुक को देख लो तो अगर फेसबुक खाली आप और 10-20 लोग और यूज करते हो तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज आप उस पर कोई फ्रेंड्स नहीं ऐड कर सकते और लोगों से आप कनेक्ट नहीं कर सकते उसमें। मगर जब सब सारी दुनिया फेसबुक यूज कर रही है तो आपके सारे फ्रेंड्स आप जिनको मिलते हो जानते हो सब लोग फेसबुक पे हैं, तो आप सब लोग एक साथ तो फेसबुक छोड़ नहीं सकते। तो फेसबुक का तो एक मतलब एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ एक डिफेंस बन गया कि अभी सारे ही लोग फेसबुक ही यूज करते हैं और करते रहेंगे, और फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, तो आप जो भी सोशल मीडिया के प्रोडक्ट यूज करते हो फेसबुक वहां पे एक बहुत ही हाईली डिफेंसिबल प्रोडक्ट बन चुका है। अब तो शुरू के 5-6-10 साल उन्होंने स्पेंड किए हैं बिल्डिंग ये नेटवर्क बनाने में, एक तो तभी उन्होंने काफी लॉसेस किए होंगे, और मुझे याद है जब फेसबुक का फंडिंग हुई थी को 10 बिलियन वैल्यूएशन पे 2000 मेरे हिसाब से 10 में या शायद उसके भी पहले 8 या 9 में 2008 में रिसेशन हुआ था बड़ा, और तभी फेसबुक ने 10 बिलियन वैल्यूएशन पे फंडिंग रेस की हुई थी और दुनिया में बहुत लोग ऐसे मतलब ये क्या है और ये कैसे 10 बिलियन वैल्यूएशन दे सकते हो। आज फेसबुक की वैल्यूएशन 500 बिलियन से ज्यादा है। तो ये कंपनीज जब इन्हें पैसा बनाने का इनका एक टाइम होता है उस टाइम पे करती है, और इसीलिए इसे रिस्क कैपिटल कहते हैं ना, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो जानते हैं कि ऐसा चांस है कि शायद ये प्रॉफिट ना बना पाए, और वो ये रिस्क ले रहे हैं कि ठीक है मेरे पास अगर 100 करोड़ है तो मैं 10 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ और ये रिस्क लेने को तैयार हूँ, और अगर चल पड़ा तो मेरे 10 करोड़ का 1000 करोड़ बन सकता है।
और तुम देखोगे ना प्रणय की, देखो जैसे अभी मतलब फेसबुक में किसी ने 50 गुना पैसा बनाया ना 10 बिलियन पे आके भी, लेकिन वैसे ही अब लेकिन आप ऐसी और 100 कंपनी होगी जहां डूबा भी होगा
बिल्कुल।
तो अगर आप वही 100 कंपनी के एग्जांपल लेते रहो तो ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रोथ के लिए लोग पैसा डाल रहे हैं तो हर कंपनी का बिजनेस अच्छा ही है, मॉडल अच्छा ही, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये ओवरऑल थीसिस है कि आप क्यों डाल रहे हो कि बहुत बड़ा हो जाना जो है जल्दी उसकी एक वैल्यू है। अब फ्लिपकार्ट ने बाय द वे दिखा दिया कि सिर्फ ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिटेलर होना एक वैल्यू था, क्योंकि वॉलमार्ट को अगर इंडिया में घुसना था तो वो किसको खरीदता, उसको वो सबसे बड़ी कोई खरीदता ना, तो जो सबसे बड़ा बन गया वो जो जीता वो सिकंदर, राइट। और इस रेस में सबसे आगे आना था, प्रॉफिट होने की जरूरत नहीं थी, उन लोगों ने ये गेम समझा कि आप सबसे बड़े बन के रहिए, और प्रॉफिट अगर आप बना करके अपने आप को छोटा रखते तो शायद आप उतने वैल्यूएबल नहीं होते यहाँ पे। इनफैक्ट थोड़ा सा देखो ये काउंटर इंट्यूटिव है। तो उन्होंने ये फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने काफी दिमाग लगाया और उन्होंने समझा ये डायनेमिक जो है इस इंडस्ट्री का, ये हर इंडस्ट्री में नहीं चलता है ना। तो ये करिए चीज है कि आप ये लेसन लेकर के आप दूसरी चीज भी वैसे ही कर लोगे तो ऐसा नहीं, हर किसी का अपना डायनेमिक है। इनकी इंडस्ट्री में ये डायनेमिक था और सक्सेसफुल चला। इनफैक्ट इतनी सारी कंपनीज में टाइगर ग्लोबल ने हिंदुस्तान में जम के पैसा लगाया, ओके, लेकिन फाइनली एक फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टमेंट ने ही उनका सारा का सारा बेड़ा पार किया है, बाकी सब बहुत जगह उनका डूबा भी।
पर एक और सवाल है इसमें से, तो एक तो आपने जो नजरिया बताया कि ये वीसी फर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है 10 साल बाद पैसा मिलेगा, पर तब जब मिलेगा तब मतलब छप्पर फाड़ के मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा एक और कहा जाता है कि ऐसा मानते हैं लोग, मुझे पता नहीं सच है कि नहीं, कि अगर आप वीसी फर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद ये कंपनियां पैसा नहीं बना रही है, पर ये डेटा है इन लोगों के पास, इनके पास ऐसे कुछ एसेट्स हैं जिनका और कुछ उपयोग हो सकता है। हाँ। तो इसीलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, शायद पैसा बने ना बने। हाँ। वो अलग बात है। हाँ। तो ये इसमें कुछ सच्चाई है क्या?
हाँ सच्चाई है, मतलब पैसा ही बनाना पड़ेगा इवेंचुअली तो कंपनी को, बट बिकॉज जैसे अभी आप इंडिया में जैसे एक ऐप है शेयर चैट जो काफी पॉपुलर हो गया, आई थिंक 15 मिलियन लोग महीने में उससे यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ट्विटर से ज्यादा लोग इंडिया में शेयर चैट यूज करते हैं। अच्छा। अभी शेयर चैट रेवेन्यू नहीं बनाता है, बट अभी लोगों ने दुनिया में देखा है हुआ है पहले ना कि फेसबुक जैसी कंपनी आई, ट्विटर जैसी कंपनी आई, इंस्टाग्राम जैसे आई, ये सारी कंपनी शुरू में यूजर एक्विजिशन करती है, एक नेटवर्क बना लेती है, और एक बार उनके पास 20-30-50 मिलियन यूजर बन जाते हैं फिर पैसा आराम से बन जाता है। तो अगर उतना ही लोग आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आप एडवर्टाइजिंग चालू कर दो या आप कोई और प्रोडक्ट उतना चालू कर दो तो आप पैसा कमा लोगे, मतलब ये कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे इनफैक्ट जो जिस आदमी ने फेसबुक पे 10 बिलियन पे इन्वेस्ट किया था उसने बिल्कुल यही मैच किया था कि दुनिया में जहां जहां सोशल नेटवर्क बने हैं आफ्टर अ पॉइंट उनका एक बार यूजेज, अगर सपोज आप प्रूव कर सकते हो कि मेरे यूजर्स हर दिन ऑन एवरेज कम से कम 10 मिनट स्पेंड करते हैं, कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा स्पेंड करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा नहीं बनाओगे। पैसा आप 100% बनाओगे क्योंकि आपके कॉस्ट कुछ नहीं होते हैं, आपके प्रोडक्ट तो बन चुका है, लोग यूज कर रहे हैं, लोगों के पास इंटरनेट है, फोन है, तो आप फेसबुक यूज करने, अगर आप दिन में 10 घंटे भी फेसबुक यूज करो तो फेसबुक का कॉस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है ना, मगर वो फेसबुक आपको दिन में 10 घंटे के एड्स दिखा सकते हैं, तो जो फेसबुक आपसे कमा सकता है वो उसका भी पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो सारी कंपनीज है डेटा तो है, बट इवेंचुअली वो डेटा से उस पैसा कमा सकते हैं क्योंकि उस डेटा से वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, उस डेटा से उन्हें और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और उस डेटा को यूज करके वो लोग आगे जाके लोग कोई ना कोई तरीके से पैसा कमा सकते हैं।
जैसे जैसे तुम देखोगे प्रणय, काफी सारा जो डेटा का यूज है ये हमेशा एडवर्टाइजमेंट के लिए ही नहीं है। जैसे स्विगी ऐसी कंपनी है, वो अपना डेटा यूज करके ये डिसाइड कर रही है कि वो खुद के कौन से रेस्टोरेंट खोल ले।
हाँ।
जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरीज है कहाँ पर है उनको ये सब पता है, तो वो ये डेटा यूज करके ये डिसाइड। या फिर अमेजोन है, जैसे अमेजोन खुद भी करता है, फ्लिपकार्ट उतना करता है कि नहीं, कि अमेजोन जो है जो एकदम कमोडिटी टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं जो हॉट सेलर हैं वो खुद के लॉन्च कर देता है।
हाँ, वो अमेजोन बेसिक्स बना लेता है,
अमेजोन बेसिक्स बना करके कि उसी में आप प्रॉफिट फिर कमा सकते हो। नॉट जस्ट दैट, अब जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पहले मार्केट प्लेस था, ठीक है, वो उसमें पैसा कमा रहा था, पर उसको लेकिन अब वो व्यूइंग हैबिट सारी उन इतने डिटेल में पता है कि उसको ये पता है मैं अगली मूवी कैसी बनाऊं, उसकी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। हाँ। वहां पे 33वें मिनट में मर्डर होना चाहिए। ठीक है। हाँ। ऐसा सब, ठीक है, तो वो इस तरह से डेटा ड्रिवन स्क्रिप्ट राइटिंग और ये सब कर रहे हैं। हाँ। और फिर वो खुद की मूवीज बना करके लॉन्च करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे।
हाँ। बिल्कुल। तो जैसे आप इवन आप कोई ये जो फिनटेक एप्स है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, इन्हें आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पता होती है कि आप महीने में कितना कमाते हो, कहाँ खर्चा करते हो, कितना खर्चा करते हो, तो ये सारा डेटा देख के आपको लोन दे सकते हैं। हाँ. ये देख सकते हैं कि ठीक है अगर आपके महीने की पगार 50,000 है और आप हर महीने 20-30,000 खर्चा करते हो तो 20,000 बचाते भी हो तो ये आपको आराम से 20,000 का लोन दे सकते हैं जो कि बैंक या कोई और दूसरे लोग नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास वो डेटा नहीं होता है.
हाँ, तो वही तो वीसी इस डेटा में एक अलग वैल्यू भी देख सकता है तो इसीलिए शायद इन्वेस्ट भी कर सकता है ना, जरूरी नहीं है कि वो पैसा अभी बना रहा.
तो ये डेटा एक चीज है ना प्रणय, आजकल क्योंकि डेटा काफी वैल्यूएबल हो गया पर इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है. जैसे प्रशांत ने बोला वो नेटवर्क इफेक्ट वो आपकी वैल्यू हो सकती है, कहीं पे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओवर टाइम आप जो बना रहे हो वो वैल्यूएबल हो सकती है, है ना. कहीं पे ये वैल्यूएबल हो सकता है कि आप कंपनी के अंदर इतना ज्यादा घुस गए हो कि उसकी इतनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके पास है कि वो कहीं भागेगी नहीं, जैसे टैली वैल्यू हो गया. ठीक है,
जैसे आप फ्लिपकार्ट को भी देख लो तो उनके अभी इंडिया में हर पिन कोड में कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करने की क्षमता है. तो ये बनाना आसान नहीं है. अगर कोई वॉलमार्ट को अगर इंडिया में चालू करना था तो उन्हें 5-6 साल लग जाते खाली वेयर हाउसेज बनाने में, हर डिस्ट्रिक्ट में लॉजिस्टिक सप्लाई बनाने में, अपना ब्रांड बनाने में. तो ये सारी चीजों की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. एंड अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर प्रॉफिट कमाना फिर इतना मुश्किल नहीं होता है आगे जाके.
एक और सवाल था, शायद ये मुझे पहले पूछना चाहिए था पर खैर अभी पूछ ही लेता हूँ. ये मुझे आइडिया देना नहीं चाहिए सरकार को क्योंकि हमारी सरकारें बुरे आइडिया ले लेती हैं, पर फिर भी आप सोचिए कि कल को सरकार बोले कि वीसी फर्म नहीं, आपको ही भारत में हो ही नहीं सकती वीसी फर्म क्योंकि वीसी फर्म दूसरे लोगों का पैसा लेती है और वो इन्वेस्ट करती है. कोई ऐसा कारण हो सकता है, मतलब सरकार को कोई कारण की जरूरत नहीं है. हाँ. तो क्या होगा उस, तो वीसी विहीन अर्थव्यवस्था कैसी होगी? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एंजल इन्वेस्टर तो होंगे तो कंपनियां शुरू होंगी पर वो कभी ग्रो नहीं हो पाएंगी क्योंकि नेक्स्ट स्टेज इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाएगा. तो क्या ये समझ ठीक है?
ये तो मतलब इंडिया के लिए बहुत ही बुरा डिसीजन होगा अगर वीसी फंड या फॉरेन कैपिटल को सरकार बैन कर देती है. आप मतलब खाली आप एक कैटेगरी ले लो, जैसे स्विगी जोमैटो ले लो, ये दोनों कंपनी स्विगी जोमैटो डंजो जो भी खाना डिलीवरी वाले एप्स हैं, ये लोग ही मिलके कम से कम 5 लाख लोगों की नौकरियां दे लो. अभी आज के दिन 2019 में 5 लाख लोग ये काम कर रहे हैं इंडिया में. 5 लाख लोगों के घर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ स्विगी जोमैटो डंजो उबर ईट्स ये सारे कंपनीज मिला के. और ये सारी कंपनीज लॉस में चल रही है बिकॉज किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है ये सोच के आगे जाके प्रॉफिट कमाएंगे. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. फ्लिपकार्ट ने कम से कम पता नहीं कितने जॉब्स क्रिएट किए होंगे, ओला ने कितने जॉब्स क्रिएट किए, उबर ने कितने जॉब्स क्रिएट किए इंडिया में. तो ये जॉब क्रिएशन की एक इंजिन है जो बंद हो जाएगी और नई चीजें इन्वेंट होना काफी बंद हो जाएगी. जैसे आप सोचो 5 साल पहले आपको किसी को अगर पैसे देने होते तो कैश के अलावा तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं था. लोगों के पास ना फोन होता था ना इंटरनेट, कुछ नहीं होता था. अभी गली गली में लोगों को पेटीएम पता होता है. बैंगलोर में मैं जब जाता हूँ तो लोग कैश लेने से मना कर देते हैं, खाली पेटीएम मांगते हैं. टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, पान वाले, हर टाइप के लोग अभी पेटीएम यूज कर रहे हैं या गूगल पे यूज कर रहे हैं, राइट. तो ये जो नई चीजें इन्वेंट होती है इससे इकोनॉमी में काफी एफिशिएंसी आ जाती है. और ये बहुत जरूरी है बिकॉज द मोर एफिशिएंट द इकोनॉमी बिकम्स द मोर बेटर इट इज फॉर द कंट्री. People start doing more productive things. तो आपका जो पूरा वेल्थ क्रिएशन का जो इंजिन है वो ही बंद हो जाएगा अगर आप वीसी फंडिंग को आप बंद करा दोगे.
और प्रणय जो तुम ऐसा सोच रहे हो कि एंजल फंडिंग चलती रहेगी और आगे बढ़ी नहीं होगी, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं होगी. एंजल भी बोलेगा कि मैं क्यों लगाऊं अगर इसको आगे बढ़ा. मतलब एंजल लोग जो है वो ऐसे बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ वो उसी समय का सोच रहे हैं. वो भी सोचते हैं कि मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ ताकि ये अगला राउंड रेस करे.
बिल्कुल.
वो कभी कभी उतना आगे नहीं सोच रहे होंगे कि ये कंपनी जो है ये 1,000 करोड़ की बनेगी, ये बनेगी, लेकिन वो ये सोचेगा कि नहीं ये कंपनी को मैं एटलीस्ट हेल्प करता हूँ ऐसी स्टेज पे ले जाने के लिए कि कोई वीसी के लिए अट्रैक्टिव हो जाए.
अच्छा,
अब अगर वो नेक्स्ट स्टेज गायब हो जाए तो पिछला स्टेज भी वेपोराइज हो जाएगा.
हाँ बिल्कुल. वही तो, कोई एक कम कंपनियां शुरू होंगी और जो कंपनियां शुरू भी होंगी वह बढ़ नहीं पाएंगी, वो छोटी छोटी रह जाएगी. मतलब जैसे आप मान लीजिए जैसे हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है काफी भारत में छोटी छोटी कंपनियां हैं पर वो कभी बड़ी नहीं हो पाई. तो शायद वैसा ही कुछ होगा इस इंडस्ट्री में भी.
हाँ, क्योंकि लोग फिर शायद सिर्फ अपने पैसे से शुरू करेंगे या इधर उधर से जो आप देखेंगे जो इंडिया का स्मॉल स्केल सेक्टर है वो उनका ब्याज दर जो है वो 35-40% होता है. तो वो ऐसे इस तरीके के ब्याज दरों पे कंपनी शुरू करते हैं और वो ब्याज के बोझ से कभी निकल ही नहीं पाते और एक छोटी कंपनी बन के रह जाते हैं.
और सोसाइटी में भी बहुत बड़ा इफेक्ट है जो अभी जो इंडिया में हो रहा है ना कि 20-25 साल के लड़के लड़कियां को 5-10-20 million फंडिंग मिल जाती है और 5-10 साल में वो खुद 100 million 1 billion कमा लेते हैं. ये अनहर्ड ऑफ है. ये मतलब ये ऐसा होता नहीं था पहले इंडिया में कि सचिन बंसल टाइप का आदमी जो कोई मिडिल क्लास फैमिली से चंडीगढ़ से निकल के बिलियनर बन जाए 10 साल में और जो मुकेश अंबानी के क्लास के लोगों में घुस जाए. ये पहले नहीं होता था इंडिया में. तो ये सब होना बंद हो जाएगा और जो एस्टेब्लिश कंपनीज है उन्हें कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा. जैसे आप 5 या 10 साल पहले की बात सोचो तो टैक्सी में होता था मेरू कैब होता था टैप कैब होते थे और ये 3-4 कंपनीज थी जो 100 करोड़ टाइप की 100-200 करोड़ की कंपनियां थी आई थिंक सो आज. और वो बहुत महंगी थी और नॉर्मल आदमी टैक्सी नहीं ले पाता था. नॉर्मल आदमी बस लेके एयरपोर्ट आता था बिकॉज टैक्सी में 1000 रुपए का बिल निकल आता था राइट. तो ओला और उबर ने इनके प्राइसेस कम कर दिए और ये प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बना दिया ज्यादा मार्केट के लिए. सब अभी यूज कर सकते हैं और जो ओला के फाउंडर हैं जो ओला के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने खूब पैसा भी बनाया है. उनके इन्वेस्टर्स ने भी काफी एटलीस्ट ऑन पेपर रिटर्न तो अभी बनाया है और सून ओला का आईपीओ भी हो जाएगा 1-2 साल में तो और पैसा बनाएंगे. तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती है और जो जो चीजों के प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं फाइनली पब्लिक के लिए. जैसे जियो को भी आप देख लो 5 साल पहले ये अनहर्ड ऑफ था कि हर इंडियन के पास इंटरनेट कनेक्टेड फोन होगा. आज है या फ्लिपकार्ट पे जो सामान मिलता है और डिस्काउंट में मिलता है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग पहले अफोर्ड शायद नहीं कर पाते. अगर आपको ये टायर 2 टायर 3 टाउन में यूपी में कहीं रहते हो या कहीं भी आप रहते हो जो मेन सिटी में नहीं है तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके टाउन में शायद ना मिलते हो अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप ले सकते हो. तो कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि लोगों को पैसा मिल रहा है और वो कंपनियां चालू कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और अच्छे प्राइसेस पे बेच रहे हैं. कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो नए लोग अमीर बन रहे हैं पुराने लोगों को कॉम्पिटिशन मिल रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएशन हो रहा है. तो वीसी इसका एक थोड़ा जर्मिनेटर है जहां से ये सब चालू हो रहा है. तो इसको अगर सरकार बंद कर देगी तो ये तो बहुत ही बुरा होगा इंडिया के लिए.
तो यहाँ पे कुशल तुमने क्योंकि अभी ये मेंशन किया कि यंग लोग पैसा खूब अच्छा से रेज कर पा रहे हैं या ये तो ये एक कॉमन सवाल रहता है. तो ये बताओ अभी कोई एक नया लड़का कॉलेज से निकला है जिसके पास आइडिया है तो उसको उसको क्या करना चाहिए फंड रेज करने के लिए. अब तुम खुद वीसी बन गए हो ये ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम विश करते हो कि तुम्हें पता होती जब तुम एंटरप्रेन्योर थे.
तो पहले तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे किसके पास जाना चाहिए फंडिंग के लिए. बहुत एंटरप्रेन्योर ये गलतियां करते हैं कि वो बड़े बड़े फंड्स के पास जाके पिच करते हैं जब उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया होता. उनके पास बिल्कुल कुछ होता नहीं है दिखाने को. तो पहले आपको कुछ बनाना चाहिए. मतलब बिफोर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओ आप कुछ तो कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ पायलट करो कुछ टेस्टिंग करके मतलब आप कुछ बना के आओ तो काफी ज्यादा फर्क उसी में आप 90% लोगों से आगे निकलना. मोस्ट पीपल वो आते हैं विदाउट एनीथिंग. वो एक पेपर पे प्लान लिख के आते थे कि हम ये करेंगे. तो करोगे तो ठीक है बट वीसी तो आपको जानता नहीं है इन्वेस्टर आपका कोई भाई तो है नहीं तो किस बात का आपको ट्रस्ट करेगा ना. तो कुछ तो आपको दिखाना चाहिए कि देखो ये मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया है या ये मैंने एक टेस्टिंग की है या अभी मेरे 100 यूजर है या 500 यूजर है. तो अगर आप कुछ भी बना के लाते हो तो ऑलरेडी आप बाकियों से आगे निकल जाते हो. दूसरा आपको ये समझना चाहिए कि क्या मेरा बिजनेस वीसी फंडेबल बिजनेस है. क्या मेरा बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं बहुत सारा पैसा लूंगा तो ये कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी. सारे बिजनेस ऐसे नहीं होते. अगर सपोज मैं कोई रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ तो रेस्टोरेंट सडनली मैं उसे 5 साल में मैं 10,000 रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता. मतलब वो एक पॉसिबल नहीं होता है. मगर अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ जैसे शेयर चैट है वो 5 साल में वो 100 मिलियन लोग यूज कर सकते हैं वो पॉसिबल है ना. तो आप ये भी आपको पहले समझना चाहिए कि क्या मेरा जो बिजनेस है वो क्या वो फास्ट स्केल अप हो सकता है और क्या 5 या 10 साल में ही मैं बहुत बड़ी कंपनी बना सकता हूँ अगर मुझे पैसा मिल गया. तो ये आपको समझना चाहिए और फिर अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है मुझे वीसी फंडिंग चाहिए. अगर आप तो इसको मार्केट साइज बोलते हैं तो वीसी क्या सोचता है कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा डालूंगा तो 5 से 7 साल में क्या ये कंपनी $100 मिलियन कमाने का पॉसिबिलिटी है. मीनिंग अराउंड 700-800 करोड़ रुपीज रेवेन्यू. प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ रेवेन्यू बोल रहा हूँ. अगर 700-800 करोड़ ये कंपनी रेवेन्यू में कमा सकती है तो ये शायद वीसी फंडेबल कंपनी है.
अच्छा.
मतलब डे जीरो से डे बाय ईयर 6 ईयर 7 तक अगर इतना पॉसिबिलिटी है. तो ये कुछ मार्केट्स में पॉसिबल होता है कुछ मार्केट्स में पॉसिबल नहीं होता है. तो फाउंडर को थोड़ा ये अपने बिजनेस पे काफी सोचना चाहिए कि क्या मेरा बिजनेस ये बिजनेस है. अगर ये नहीं है तो फिर आप आपका टाइम वेस्ट करने वाले हो क्योंकि फिर आप बहुत वीसीज के पास जाके बहुत कुछ पिच करोगे मगर पैसा नहीं मिलेगा आपको और आपका टाइम वेस्ट होगा. तो आप उससे बेहतर होगा कि आप अपना कंपनी बनाओ या किसी से लोन लो या कोई आपके सोशल नेटवर्क में या आपके फैमिली या अंकल या कोई तो होगा जो आपको थोड़े बहुत पैसे दे देगा. फिर आप उसको प्रॉफिटेबली चलाओ और धीरे धीरे उसको बढ़ावा बनाते जाओ और आप 100 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ की कंपनी बना सकते हो 500 करोड़ की कंपनी बना सकते हो. खाली उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको. वीसी ये ढूंढ रहा है कि मैं मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो विद इन 5 to 7 years 100 मिलियन रेवेन्यू कमा सके. तो ये आपको सोचना चाहिए।
तो ये अच्छा पॉइंट है कि बेसिकली आप मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए तो एक 20 करोड़ की कंपनी है जो 2 करोड़ प्रॉफिट बना रही है, ये भी बहुत अच्छी चीज है,
बिल्कुल
इसमें कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है और आपके पास अगर ऐसा बिजनेस है तो जरूर कीजिए, लेकिन आप रोइए मत कि वीसी क्यों नहीं मेरे बिजनेस में पैसा डाल रहा।
जैसे इंफोसिस टाइप की कंपनी है जो दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, आज अगर आप एक कंपनी चालू करो इंडिया में तो कोई वीसी आपको फंड नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी कंपनी बन के रह जाएगी, उसमें भी आप 100 करोड़, 200, 500, 1000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो,
बिल्कुल
खाली आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा।
और काफी बार हो सकता है कि आप 10 साल लगाओ और उसके बाद कोई उस समय वीसी नहीं आएगा, कोई प्राइवेट इक्विटी वाला आएगा। जैसे आपने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रेस्टोरेंट आप बहुत अच्छा खोल लो लेकिन रेस्टोरेंट तो एकदम फंडेबल बिजनेस नहीं क्योंकि एक ही रेस्टोरेंट है, लेकिन एक बार 5-10 साल बाद नाम बनाने के बाद में आप बोलो कि अब मैं इसका फ्रेंचाइजी मॉडल बनाऊंगा मैकडॉनल्ड टाइप, तो वो सडनली इन्वेस्टेबल बिजनेस हो गया, $100 million टाइप या उससे भी बड़ा टाइप, राइट? और उस टाइम पे आपको बहुत बड़ा पैसा भी चाहिए, तो कोई नॉर्मल वीसी नहीं, बड़ा कोई इनफैक्ट बड़ा वीसी ही आपने पैसा डालेगा।
हाँ, जैसे डोमिनोज की जो इंडिया की फ्रेंचाइजी कंपनी है जुबिलेंट फूड्स, वो तो बहुत बड़ी है, वो लिस्टेड कंपनी है, काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड भी करती है।
हाँ, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक। या फिर कोई पुराने हिंदुस्तान में बिजनेस है जिनको प्राइवेट इक्विटीज ने, अब जैसे केवेंटर है, वो तो एक दुकान होती थी ना कनॉट प्लेस में, लेकिन उन्होंने 50 साल नाम बना के 100 साल, या नीलगिरीज हो गया बैंगलोर की सुपर मार्केट थी, उन्होंने 100 साल नाम बनाया, उसके बाद में वो वीसी फंड उसको प्राइवेट इक्विटी ने टेक ओवर करके फ्रेंचाइजी मॉडल उसका बना दिया। तो हो सकता है, तो वो अलग चीज है, तो आपको यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड काफी सारे बिजनेसेस में जहाँ पे आपको लंबे समय के लिए बिजनेस चलाने होते हैं। सारे बिजनेस ऐसे क्विक वीसी फायर नहीं है। चलो बढ़िया, और बताओ क्वेश्चन।
और फाउंडर को ये समझना चाहिए कि जो मेरा बिजनेस है, क्या जो फंड के पास मैं जा रहा हूँ क्या वो इस स्पेस में इन्वेस्ट करता है। हर फंड की अपनी थीसिस होती है जो उनके वेबसाइट पे नॉर्मली लिखी होती है कि वो किस टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ई-कॉमर्स, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, लेंडिंग कंपनीज, तो आप ये जाके देख सकते हो कि क्या ये फंड मेरे स्पेस में या मेरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो भी आप जाके उन्हें मिल रहे हो तो अगेन आप ही का टाइम खराब कर रहे हो, बिकॉज वो नहीं इन्वेस्ट करने वाले, उनके एक थीसिस है, वो उस थीसिस को फॉलो करने वाले हैं। थर्डली आपको ये चेक करना चाहिए कि कौन से स्टेज के इन्वेस्टर्स हैं। तो बहुत लोग जाके सब टाइप के इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, बट उन्हें शुरू में तो फाइनली चाहिए होते हैं 50 लाख या 1-2 करोड़ चाहिए होते हैं, और वो मिलते हैं उन फंड्स को जिनके पास 500 मिलियन पड़े हुए हैं बैंक में, तो वो उनके लिए ये टाइम वेस्ट होता है, बट वो फिर भी देखना चाहिए कि इंडस्ट्री में हो क्या है, तो वो भी लोगों को मिलते हैं, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा मिलने वाला है वहां से। तो आपको आपकी जो फंड रेजिंग है उसको काफी फोकस रखनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मेरे टाइप का इन्वेस्टर कौन है जो ये स्पेस में इन्वेस्ट करता है, इसकी कोई हिस्ट्री है तो मैं उसके पास जाऊँ, और उसके बाद मैं कुछ ट्रैक्शन लेके जाऊँ, कुछ बना के दिखाने को लेके जाऊँ, ऐसा नहीं कि बस एक पिच मारने जाऊँ कि ये मैं बनाऊंगा। अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना के जाए, इवन वो बेसिक प्रोटोटाइप भी हो, तो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और लास्टली आपको मार्केट साइज क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बड़ा क्यों बनेगा या ये कंपनी बड़ी क्यों बनेगी, ये इसका आंसर आपके पास क्लियरली होना चाहिए कि इसका डिमांड है मार्केट में।
एक चीज यहाँ ये बताओ कुशल, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक लिमिटेड क्लब वाला फैक्टर भी है क्या वीसी इंडस्ट्री में, कि भाई जितने लोग ये जो पैसा दे रहे हैं वो सब एक तरीके की कॉलेजेस से आते हैं सारे, IITs, NIT, बिट्स पिलानी, गिंडी, मतलब ये एक टॉप टियर कॉलेजेस के ही सब बच्चे होंगे, और उन्हीं वहीं के लोग फाइनली बहुत सारे वीसी फंड्स में भी वही लोग होते हैं, तो एक काफी तो एक जान पहचान का एक सर्कल बन जाता है। आप अगर उसे क्लब में नहीं है तो एक बड़ा मुश्किल होता है कि आप पहुंचे, आपने किसी सिर्फ एक ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेजा तो आपका कोई ईमेल देखेगा नहीं, है ना, तो आप किसी अपने सीनियर की जान पहचान से जाते हो या इस तरह से जाते हो। तो ये इस चीज को कोई, या फिर आप वैसे नहीं हो तो आपने दूसरी किसी टाइप की कंपनी में काम किया हो, जैसे आप कोई फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय हो, या आप गूगल, जैसे यूएस में अगर आपने गूगल एक्स गूगलर हो तो फटाफट फंड रेज हो जाता है, है ना, हिंदुस्तान में भी अगर आप फ्लिपकार्ट में हो तो हो जाता है। तो ये क्या कोई जो एक बेसिकली ब्राइट ग्रेजुएट जो कि इन टॉप टियर कॉलेजेस में नहीं है, ये हाई फ्लाई स्टार्टअप में काम नहीं करता पर बहुत अच्छा आइडिया है, वो इन सब सिस्टम से कभी कभी बाहर रह जाता है, तो वो क्या करे?
तो ये बात सही है आपकी कि बिल्कुल एक क्लब तो है, और आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो उनके लिए थोड़ा सेफर बेट बन जाता है, अगर वो जानते हैं कि ठीक है बंदा IIT का है या ये फाउंडर ने MBA किया हुआ है IIM अहमदाबाद से, अच्छे कॉलेज का है, तो थोड़ा एक उन्हें कंफर्ट मिलता है कि एटलीस्ट ये आदमी स्मार्ट है, और यू नो आई एम इन्वेस्टिंग इन समबडी जिसे बेसिक्स तो पता है, तो मैं तो उनके तरफ से थोड़ा एक तरीका है रिस्क कम करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन पेडिग्रीड फाउंडर में इन्वेस्ट नहीं करते, इसका मतलब ये कि नॉन, अगर आप इन कॉलेजेस से या आप इन कंपनी से नहीं हो तो आपके थोड़ा ज्यादा मुश्किल है प्रूफ करना अपने आप को. बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है. जैसे आप इंडिया में भी आप अगर विजय शेखर शर्मा को देख लो जो पेटीएम चलाते हैं, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं. जब भी उन्होंने अपनी कंपनी चालू की थी तो वो इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल पाते थे और उन्होंने फिर भी कर दिखाया ना. और ओयो के फाउंडर है रितेश अग्रवाल, वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, उन्होंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज ही छोड़ दिया, तो कॉलेज गए ही नहीं. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में नॉन पेडिग्री फाउंडर्स को फंडिंग नहीं मिलती है. खाली उनके थोड़ा थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज उन्हें थोड़ा ज्यादा अपने बारे में अपनी कंपनी में ज्यादा प्रूफ देना पड़ता है कि ये कंपनी एक्चुअली चल रही है. पर उन्हें भी फिर फाइनली अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हो तो पैसा तो आपको मिल जाएगा इंडिया में. आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो या अच्छे कंपनी से नहीं हो तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी. हाँ, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी आपको, बट आपको पैसा मिल जाएगा.
तो बेसिकली लोगों को ऐसे हताश नहीं होना चाहिए लेकिन एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमको कुछ डिफरेंट या कुछ ज्यादा करना पड़ेगा.
आप ये भी सोचते हो ना, जो बंदा टॉप 100 में आईआईटी में आया है तो उसने भी तो ऑलरेडी मेहनत की हुई है लाइफ में, तो उसका भी उसका भी हक है ये एक्सपेक्ट करना कि मुझे कुछ तो इसका फायदा मिले. जो तो उनका अपना बेनिफिट है, बट इसका मतलब फाइनली इन्वेस्टर को पैसा कमाना है. तो अगर आप उसे ये केस बना के दे सकते हो कि देखो ये मैं बना रहा हूँ और इसका ये एविडेंस है, ये लोग यूज कर रहे हैं, इतना डिमांड है प्रोडक्ट का, इतना प्रॉफिट मार्जिन है, तो लोग जरूर इन्वेस्ट करेंगे.
बिल्कुल. और एक मैंने यहाँ एक जो तरीका देखा है कि कभी कभी एक टू स्टेप राउट होता है. आप अगर अच्छे आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हो तो पहले रादर देन कि आप पैसा रेस करने ही चले जाओ, आप एक अच्छे स्टार्टअप में पहले एम्प्लॉय बन जाओ.
ये भी बहुत,
तो एटलीस्ट ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि ठीक है आईआईटी आपकी, अगर आप एक उस स्टेज से पार निकल गए तो दोबारा तो जाओगे ना. लेकिन ये रास्ता आपके लिए हर करियर अपॉर्चुनिटी पे खुला हुआ है. जैसे अगर आप SaaS स्टार्टअप चालू करना चाहते हो तो Zoho से अच्छी तो दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो हिंदुस्तान में ही है. तो एक बार आप Zoho या Freshdesk में पहुंच गए तो उसके बाद में आप एनीवे इन्वेस्टर को भरोसा आता है कि आपको पता है ना ये चीज चलती कैसे.
बिल्कुल. और इन्वेस्टर का भी ये कोई मतलब उनका उनका हक है ये एक्सपेक्ट करना है कि फाउंडर जो कंपनी चालू कर रहा है क्या उसे इस कोई स्पेस में पास्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं है. ऑब्वियस सी बात है कि अगर फाउंडर ने Freshworks Zoho में काम किया हुआ है तो वो बेटर फाउंडर होगा SaaS कंपनी चालू करने के लिए एज कम्पेयर टू नो किसी और ने अगर कोई ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम किया और वो अब कह रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तो हो सकता है वो बना ले बट चांसेस कम है.
Right.
तो इन्वेस्टर तो ये देखेगा कि अगर फाउंडर ने पहले ही ऐसा कुछ काम किया हुआ है, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई एक्सपीरियंस है, तो मोस्ट डेफिनेटली वो उसके चांसेस बढ़ा देगा फंडिंग के लिए.
अब ये क्योंकि हमने Zoho Freshdesk की बात की तो क्विकली ये भी पूछूंगा, ये एक नया ट्रेंड है मेरे को लगता है पूरी दुनिया में ही.
हाँ.
जहां पर यूजली आपका जो प्रोडक्ट होता था वो हमेशा मार्केट के पास बनता है.
हाँ.
और एक हिंदुस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में मेरे को लगता है ये हमेशा गलत फहमी रहती है, हिंदुस्तान में प्रोडक्ट क्यों नहीं बनते लोग पूछते. हाँ, रहते हैं. हाँ, तो बोलता हिंदुस्तान में मार्केट कहाँ है.
बिल्कुल.
गरीब देश में कैसे प्रोडक्ट बनेंगे. हाँ, क्योंकि गरीब देश में मार्केट है नहीं. जो लोग बोलते हैं विदेशी प्रोडक्ट आके सिर्फ बिकते रहते हैं, अरे विदेशी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के लिए तो हिंदुस्तान में कितना ही पैसा कमाते हैं, उनका ग्लोबल रेवेन्यू का 2-3% भी नहीं होता.
इनफैक्ट यूएस
अगर उनको इसी मार्केट में बनाते तो कहां से बनाते.
पर मार्केट सेम होना जरूरी नहीं है ना सौरभ. मार्केट भारत में ही होना ऐसा जरूरी नहीं है, भारत बना सकता है पूरे विश्व.
वो मैं कह रहा हूँ. हाँ बिल्कुल प्रणय, तो यही एक चीज है जो बदली है इंटरनेट की वजह से. पहले ऐसा नहीं था प्रणय.
हाँ,
तो और ये बदली है तो दिख रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताओ ना.
तो ये ट्रेंड तो चालू हुआ विद द सर्विसेज कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS. ये सॉफ्टवेयर बनाते थे दूसरों के लिए मगर ये अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वे में नहीं बनाते, मतलब ये अपना सॉफ्टवेयर को ये ओन नहीं करते थे. ये बना के किसी और को दे देते थे कि जैसे सिटी बैंक को कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर चाहिए तो TCS ने वो बना के उन्हें दे दिया. अब वो सॉफ्टवेयर सिटी बैंक का है और TCS उसको मेंटेन करेगा. तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो होते हैं उस बिजनेस में और वो एक मैन पावर इंटेंसिव बिजनेस होता है. अब क्या हो रहा है, कंपनीज लाइक Zoho, Freshworks, ध्रुवा, ये सारी कंपनीज ने प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बनाया कि वो एक ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनके सारे क्लाइंट्स सेम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और वो सॉफ्टवेयर का वो सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं. मतलब एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या एवरी ईयर वो कोई फी पे करते हैं Freshworks को. और तो उसमें काफी ज्यादा हायर प्रॉफिट मार्जिन होता है बिकॉज आप आपकी आईपी ओन करते हो और वो प्रोडक्ट आपका है. तो इंडिया में अभी ये ट्रेंड चालू हुआ है बिकॉज इंडिया में एक सालों से लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो एक वो टैलेंट है और वो टैलेंट थोड़ा चीप भी है एज कम्पेयर टू अगर आप यूएस में सेम कंपनी चालू करने जाओ तो जो इंजीनियर्स को आपको वहां पे करना पड़ेगा दैट विल बी 10 गुना ज्यादा होगा इंडियन इंजीनियर से. तो काफी सस्ता पड़ जाता है इंडिया में सॉफ्टवेयर बना के बाहर ग्लोबली बेचना. तो इन्फोसिस, विप्रो, इन सब ने यही सॉर्ट ऑफ बिजनेस मॉडल अपनाया था कि हम इंडियन इंजीनियर्स को यूज करके बाहर सॉफ्टवेयर बेचेंगे। मगर अब क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन ऑफ कंपनीज है वो सॉफ्टवेयर बना रही है, बट वो खुद के लिए बना रही है, वो खुद का प्रोडक्ट बना रही है और खुद आईपी ओन करते हैं और वो प्रोडक्ट को जाके बाहर बेच रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन और जो कंपनी की ग्रोथ भी है वो काफी ज्यादा फास्टर होती है और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होती है।
तो और मैं बोलूंगा प्रणेश, में ये जो एक बड़ा फर्क ये भी आया है कि जो डिजिटल मार्केटिंग अच्छी हो गई है, तो आप आज दुनिया में कहीं भी बैठ के सेलिंग कर सकते हो कहीं पे भी।
हाँ,
तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अदरवाइज हमेशा आपको सेल्स तो लोकल चाहिए ही होती थी, भले ही आप बना कहीं भी लो।
हाँ,
आप आउटसोर्सिंग भी लो कर रहे थे इंडिया में, तो ठीक है प्रोडक्ट बनता इंडिया में था, लेकिन यूएस की कंपनी लोकल सेल्स टीम रखती यूएस में बेचने के लिए या यूरोप में बेचने के लिए।
हाँ,
आज आप कहीं भी बैठे फेसलेस सेलिंग एक तरह से कर सकते हो। हाँ, सिर्फ आपको फोन चाहिए या इंटरनेट चाहिए।
हाँ,
और उसके थ्रू ये फेसबुक गूगल एड्स के थ्रू जो सेलिंग हो रही है, इंडिया में भी बहुत पेंटर लोग हैं, उनको सब पता है सब कैसे करते हैं।
और जो बायर है बाहर इंडिया के, वो भी काफी बदल गया है। 10 साल पहले खाली, 10 या 20 साल पहले आप सोचो तो खाली लार्ज कंपनी सॉफ्टवेयर बाय करते थे, सिटी बैंक हो गया या मॉर्गन स्टैनली, वॉलमार्ट, इस टाइप की कंपनी सॉफ्टवेयर लेती थी। आज एक छोटा सा कोई जिम ओनर है या कोई होटल ओनर है न्यूयॉर्क में, या किसी का कोई योगा स्टूडियो है, ये लोग भी सॉफ्टवेयर लेते हैं। ये लोग भी $10-$20-$50 महीने का खर्चा करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर लगता है उस पर ये लोग स्पेंड करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इन लोगों को बेचने के लिए तो आपको बिल्कुल लोकल सेल्स की जरूरत नहीं होती है। आप ऑनलाइन ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप वीडियोस बनाकर डाल सकते हो, आप पॉडकास्ट बना सकते हो और लोग ये सब सुन के आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके आपकी वेबसाइट पर आके प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जो सेल्स की जो एक थोड़ा ऑफ डिसएडवांटेज था इंडिया में बैठ के सॉफ्टवेयर बनाने का, वो अभी काफी हद तक चली गई है।
ठीक, तो क्वेश्चन अंत में अभी मैं पूछूंगा, ओवरऑल ट्रेंड मेरे को बताओ कि अब तो तुम थोड़े समय से ये कर रहे हो।
हाँ,
तो तुमको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो जिसको स्टार्टअप सीन बोलते हैं,
हाँ,
वो उसमें तुमको क्या चेंजेस दिख रहे हैं और क्या ट्रेंड दिख रहा है? आई मीन 7-8 साल पहले जब तुमने जर्नी शुरू की थी तब से अब में क्या फर्क है और क्या देख रहे हो तुम अगले 3-4 साल में, क्या क्या चीज है जिससे तुमको एक्साइटमेंट है?
मुझे तो ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि हम इसको सीवियरली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इंडिया में हो रहा है वो लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कि कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। आप अगर 20-25-30 साल के लोगों को आप पैसा दे दो कुछ बनाने के लिए, जो हाईली टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने IIT में top 100 रैंक लाए हैं या कुछ बनाने को आता है उन्हें, उन्हें एक तो बनाने की क्षमता है, अब उनके पास बनाने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो भी मिल जाते हैं और अभी एक मार्केट भी है, लोगों के पास फोन है, फोन पे इंटरनेट है, उनके पास पेटीएम है, गूगल पे है, तो वो ट्रांजैक्ट भी करना चालू कर रहे हैं, उनके अपने बैंक अकाउंट्स हैं। तो ये एक बहुत ही, मेरे हिसाब से इंडिया के हिस्ट्री में ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बन गई है, जो अभी हम जिस एज में रह रहे हैं ये शायद ही कभी वापस आएगा। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम एवर टू स्टार्ट अ कंपनी इन इंडिया। तो नेक्स्ट 5 और 10 साल में तो मतलब आई डोंट थिंक हम में से कोई भी इमेजिन कर सकता है कि दुनिया कितनी बदल जाएगी। आप खाली 10 साल पहले की बात सोचो, आईफोन इटसेल्फ, आज हर आदमी के पास एक स्मार्टफोन है, आईफोन इटसेल्फ 2007 में आया है, ये बस 12 साल पुरानी बात है और 12 साल में इतनी कंपनीज उस पर बन चुकी है। आप उबर देख लो, ओला देख लो, स्विगी देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, हॉटस्टार देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो, ये सारे $1 बिलियन कंपनीज बन चुके हैं ओनली बिकॉज आईफोन एक आया और लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आए और स्मार्टफोन पे इंटरनेट आया। अब वो सेम चीज इंडिया में आई है, हर एक के पास जियो है, हर एक के पास इंटरनेट है, हर एक के पास स्मार्टफोन है और हर एक के पास पेमेंट भी है, पीपल कैन बाय थिंग्स ऑनलाइन। तो ये जो चीजें है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें से क्या निकलेगा ये इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है, मगर अगले 10 से 20 साल में इंडिया का तो हुलिया बदलने वाला है पूरा।
बढ़िया बढ़िया। और तो इसमें तुमको लगता है सरकार भी कुछ कर सकती है इसको फॉस्टर करने के लिए या उनको दूर रहना चाहिए?
माय ओपिनियन इज उन्हें दूर रहना चाहिए, बिकॉज सरकार जितना कोशिश करती है उतना ही ज्यादा रूल्स बनाने लगती है। जैसे आप इंजन टैक्स का अगर आप इशू देख लो तो उन्होंने काफी परेशान किया स्टार्टअप्स को और अभी भी वो पूरी तरह से रिजोल्व नहीं हुआ है। सरकार को द बेस्ट थिंग सरकार जो कर सकती है वो ये होगा कि वो कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दे, बिल्कुल जीरो कर दे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई कंपनी चालू करूं, मैं शुरू के 3-4 साल सैलरी ना लूं, मैं कुछ बनाऊं, उसको लॉन्च करूं, बड़ा सा रिस्क लूं मेरे लाइफ में और 10 साल बाद उस कंपनी को बेचूं, तो जब मैं वो पैसा कमाऊंगा उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर आप बस इतना कर दो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा और बहुत और कैपिटल इंडिया में आने लगेगा, VC फंड्स पे और काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे और ये जो वेल्थ क्रिएशन का इंजिन है इसकी ग्रोथ रेट और काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो सरकार ने काफी कुछ ऑलरेडी किया भी हुआ है, जो पेमेंट्स का उन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छा है, वो इंडिया में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट्स के लिए UPI का वो वर्ल्ड में नंबर वन है. आई डोंट थिंक इवन इवन इनफैक्ट जब यूएस से हमारे दोस्त वापस आते हैं हॉलीडेज में तो उनको शॉक लग जाता है कि यहाँ पर पैसा भेजना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू द यूएस. तो सरकार ने एक दो चीजें तो काफी अच्छी की है नो डाउट. पेमेंट्स इज वे अहेड इन मोस्ट एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर वेस्टर्न यूरोप और यूएस में जाके आप शॉक हो जाओगे. वहां पे पैसे भेजने में एक दो दिन लग जाते हैं. अगर मुझे मेरे बैंक से आपके बैंक में भेजने हैं तो बहुत सारा फीस भी लगता है और बहुत टाइम भी लगता है और मतलब एकदम शॉकिंग लगता है कि हाउ कैन दिस कंट्री बी बिहाइंड इंडिया. बट दैट द गवर्नमेंट हैज डन तो क्रेडिट टू देम. बट बाय एंड लार्ज दे शुड स्टे अवे. दे शुड जो बिजनेसमैन है जो फाउंडर्स हैं जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बनाना चाहते हैं कुछ उन्हें गवर्नमेंट को जितने रेगुलेशन है वो कम करने चाहिए. जैसे सिंगापुर में आई थिंक अगर आप कोई कंपनी चालू करो तो आधे दिन में आप एक दो घंटे में यू कैन स्टार्ट अ कंपनी. इंडिया में ऐसा नहीं है. टाइम लगता है. आपको एक ऑफिस दिखानी पड़ती है. आपको दो लॉयर हायर करना पड़ेगा. सीए हायर करना पड़ेगा. फाइलिंग्स करनी पड़ेगी. आरओसी में जाना पड़ता है. तो अभी भी इंडिया में रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है कंपनी चालू करने के लिए चलाने के लिए. हर महीने टीडीएस भरना पड़ता है. जीएसटी भरना पड़ता है. प्रोफेशनल टैक्स भरना पड़ता है. इनफैक्ट जब मैं मेरी कंपनी चला रहा था शुरू के तीन साल में मैं छह टाइप के टैक्स भरता था और मैं प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमाता था. आई टू पे प्रोफेशनल टैक्स. आई टू पे सर्विस टैक्स. आई टू पे वैट. आई टू पे टीडीएस. आई टू पे माई पर्सनल इनकम टैक्स एंड आई टू फाइल रिटर्न्स फॉर माई कंपनीज इनकम टैक्स. तो छह टाइप के टैक्स होते थे. और ऐसा नहीं है कि कुछ मैं भरता था बट फिर भी मुझे रिटर्न फाइल करने पड़ते थे. एवरी मंथ मुझे जाके सरकार को बताना पड़ता था कि मैंने एक्चुअली कुछ कमाया नहीं तो मेरे पास टैक्स है नहीं भरने को. बट उसमें टाइम ज्यादा है लोगों का.
जीरो रिटर्न एटलीस्ट करना पड़ेगा. पेपर वर्क बहुत है मतलब.
तो ये जो है ये सरकार को समझना चाहिए कि मतलब आप लोगों को अकेला छोड़ दो जब तक वो एक लेवल के थोड़े बड़े कंपनीज बन जाए. उसके बाद आप उन्हें टैक्स करो तो और काफी ज्यादा स्टार्टअप्स बनने लगेंगे. और इवन जो स्मॉल कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नहीं है इवन दे विल बी एबल टू रन देयर ऑपरेशंस बेटर. आज आप कोई भी 10-12 लोगों की कंपनी में अगर जाओगे तो दो तीन लोग तो सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं और ये कंप्लायंस का काम करते हैं. वो बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट वे है काम करने का. और दुनिया में ऐसा नहीं होता है. मतलब आप बाहर की दोनों कंट्रीज में जाके देखो यूएस में कैनेडा में न्यूजीलैंड में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है बिजनेस चलाना. तो सरकार को जो रूल्स और रेगुलेशंस और पेपर वर्क है ये कम करना चाहिए और बाकी लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए. वो खुद ही बड़ी कंपनियां बना लेंगे.
ठीक ठीक बस बढ़िया. ये कुशल आई होप कि कोई पॉलिसी मेकर्स आपकी आवाज सुन रहे हैं तो ये बड़ा मजा आएगा. तो आज बहुत मजा आया आपकी पुलियाबाजी सुनकर और होप करते हैं हमारे श्रोता लोगों को भी बहुत मजा आएगा. थैंक यू.
थैंक यू. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. मुझे भी बड़ा मजा आया.
उम्मीद है आपको भी मजा आया. यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण. तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो. आपकी उम्र कुछ भी हो. अगर आप पब्लिक पॉलिसी विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए. और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए पुलियाबाजी@gmail.com पर या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर. शुक्रिया.